તારીખ 5/5/1995 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 26.
क्या प्रकार के होते हैं, और उसमें से वो मार्ग किस प्रकार से निकालते हैं। मुमुक्षु जीव को प्रकृति दोष हरेक का अलग अलग होता है, इसका कोई नियम नहीं होता है कि ऐसे ही प्रकृति दोष सबका हो। अनेक प्रकार के दोष होते हैं, किसकी प्रकृति कैसी हो, किसकी प्रकृति कैसी हो, हरेक का इतिहास भी एक सा नहीं होता है, सभी की योग्यता भी एक सी नहीं होती। कहते हैं मुमुक्षु, लेकिन सबकी योग्यता तो एक सी नहीं होती है। और उत्कृष्ट मुमुक्षु होते हैं तो इनके दर्शन मुख का दोष बहुत कम हो जाता है। चारित्र मुख के परिणाम में भी जो रस है वो रस की मंदता काफी मात्रा में आ जाती है, और वो कोई सत्पुरुष के योग से उनको मार्ग मिल जाता है। सुगानी जी को भी उत्कृष्ट मुमुक्षुता आ गई थी, गुरुदेव मिले तो मार्ग मिल गया। उस तरह से मार्ग तो अपनी भावना के कारण से सब व्यवस्था कुदरत से बैठ जाती है और मार्ग मिल जाता है। मुमुक्षु जी
उत्तर के संदर्भ में, इस उत्तर के संदर्भ में प्रश्न है, मुमुक्षु जो है वो अपने प्रकृति का समर्पण करता है, फिर भी उसको प्रकृति का दोष कैसे लगता है?
जो मुमुक्षु जी प्रकृति छोड़ना चाहता है उसका प्रकृति दोष कर जाता है। जो प्रकृति दोष छोड़ने की तैयारी में नहीं है उनको प्रकृति दोष छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद को निर्धार करना होता है कि हमारे जो भी प्रकृति का दोष है उनको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ देना है। वो हमारे लिए बहुत घातक है और हमारे मुमुक्षुता में आगे बढ़ने में एक बड़ा बड़ा अवरोध है, रुकावट होती है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है तो प्रकृति को छोड़ने का भावना आती है, और जिसको प्रकृति को छोड़नी है उसको तो उसका लाभ होता ही है।
वो अपने प्रकृति का समर्पण करता है तो यथार्थता में प्रवेश करता है, फिर भी उसको किस प्रकार के प्रकृतिगत दोष रह जाते
हैं?
फिर भी क्या उसको प्रकृतिगत दोष रह जाते
हैं? जो मुमुक्षु प्रकृति का समर्पण मैंने छोड़ने के अभिप्राय में आता है उसके प्रकृति दोष है वो पतला हो जाता है और बाद में जाता है। पहले वो शिथिल हो जाता है और बाद में ऐसा
ज्ञान दशा के काल में ही जाता है,
ज्ञान दशा के काल में जाता है,
उसके पहले नहीं,
उसके पहले शिथिल हो जाता है। ज्ञान दशा के काल में जाता है ममता बंदी टूट जाती है
जी,
प्रकृति दोष चला जाता है और मोक्ष दशा में वो शिथिल हो जाता है। क्योंकि अभाव का कारण तो आत्मावलंबन के सिवा होता नहीं, इसलिए ज्ञान दशा के पहले अभाव नहीं होगा लेकिन शिथिल अवश्य हो सकता है। ये बात रस का अभाव होना, रस का मंद होना, रस का टूट जाना, उसको शिथिलता कहते हैं।
कषाय का अभाव नहीं होता, कषाय रस का अभाव,
रस का अभाव होता है, कषाय का अभाव, कषाय को प्रकृति को मिलती बात है। मुमुक्षु जीव ज्ञानी की पहचान में आने के बाद क्या प्रकार के दोष से मुक्त होते हैं और जीव को ज्ञानी पुरुष कैसे बचा लेते हैं? ज्ञानी पुरुष के आज्ञा में वो रहता है तो बच जाता है, ज्ञानी की जैसे डॉक्टर के सूचना में रहता है तो दर्द जाता है, ऐसे जो आज्ञा में रहता है तो वो बच जाता है। स्वच्छंद से तो बचने का कोई उपाय, स्वच्छंद करेगा तो कोई बचने का उपाय नहीं। और पहचान होती है तो किस किस प्रकार के दोष दूर होते हैं, उस विषय में उपाल देव का पत्र 522 नंबर का है। ज्ञानी की पहचान होने के बाद
ज्ञानी की पहचान में आने के बाद
किस प्रकार के दोष से बीत जाता है, पेज नंबर 20। जीव को ज्ञानी पुरुष की पहचान होने पर तथा प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का ही जाना योग्य है। मंद हो जाना योग्य है। अनंतानुबंधी तो जाएगा अनुभव होने से, स्वानुभव के पहले अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता है, लेकिन मंद हो जाता है। यानी कि क्रोध मान माया लोभ की जो प्रकृति है, कोई भी हो, एक हो या एक से ज़्यादा दोष हो, उसका रसमंद हो जाएगा, यानी चिकनापन नहीं रहेगा, चिकनापन छूट जाएगा और आगे जाकर के अनुक्रम से परीक्षणता को प्राप्त होते हैं। ज्यो ज्यो जीव को सत्पुरुष की पहचान होती है, क्यों क्यों उसका मताभिग्रह, मत का आग्रह उसका कम हो जाता है। मताभिग्रह कम होता है, दुराग्रह कम होता है, कई प्रकार के वो आग्रह में नहीं खड़ा रहता है, बात को जल्दी से छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको सरलता विशेष रूप से प्राप्त होती है। जहाँ आग्रह है अपने विचार का, अपने परिणाम का, अपने भाव का, अपनी बात का, जिसको आग्रह है वो असरलता है, आग्रह छूट जाता है, सरलता के कारण आग्रह छूट जाता है। तो पहचान से सरलता उत्पन्न होती है, ये बात आ गई उसमें। ये भाव शिथिल होने लगते हैं और अपने दोषों के देखने की ओर चित्त मुड़ जाता है, वो अपना दोष देखने लगेगा, निष्पक्षपात रूप से दोष का बचाव नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, निष्पक्ष होकर के अपना दोष देखेगा। विकथा आदि भाव में निरस्ता लगती है, उनको अपना प्रयोजन छोड़ करके जो भी बात है वो विकथा है, निष्प्रयोजन है, उसमें उसको रस नहीं आएगा। अथवा ऐसी बातों में उसको जुगुप्सा, मैंने घृणा उत्पन्न होगी कि क्या ये फालतू की पंचायत करते हो, उनको फालतू की किसी के पंचायत में रस आता नहीं है। कोई करता है तो घृणा होती है कि बेकार की बातों में अपना समय शक्ति बिगाड़ करके अपना अहित क्यों करना, वो तो अपना अहित करने की बात है। हाँ, द्वेष होता है और ऐसी बात बात में द्वेष होना भी
चाहिए वो प्रशस्त द्वेष है, वी कथा में घृणा होना वो प्रशस्त द्वेष है, वो मोक्ष को होना चाहिए। और जीव को अनित्य आदि भावना का चिंतन करने के प्रति बल वीर स्फुरित होता है, अनित्य अशरण अन्यत्व आदि जो भावना है वो भावना बहुत बलवान पने से उसको उठती है, उसमें उसको बहुत रस आता है। और जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष के समीप सुना है उसमें भी विशेष बलवान परिणाम से वह पंच विषय आदि में अनित्य आदि भाव को दृढ़ करता है, सुना है इससे भी अपना परिणाम बलवान करता है। देखो मुमुक्ष है ने, पहचान होने के बाद इतनी ताकत आती है, तो ज्ञानी पुरुष से सुना है इससे भी जोर से वो अपने परिणाम को बलवान रूप से भाता है। अर्थात सत्पुरुष की प्राप्ति होने पर ये सत्पुरुष है इतना जानकर, सत्पुरुष को जानने से पहले जिस तरह आत्मा पंच विषय आदि में रक्त था मैंने रस लेता था, उस तरह उसके पश्चात रस नहीं रहता है उनको, उदय तो आता है उनको, पूर्व प्रारब्ध अनुसार पंचेंद्रिय का विषय तो सामने आएगा, लेकिन सत्पुरुष के पहचान पहले जो रस था वो बाद में वो रस नहीं रहता है। पहचानने से रस में उतना फर्क पड़ गया है, पहचान की योग्यता आई ने, उस योग्यता में दृढ़ मुमुक्षुता आई तो रसमंद पंच विषय का हो ही जाएगा। और अनुक्रम से वह रक्त भाव मंद हो जाए ऐसे वैराग्य में जीव आता है, विशेष वैराग्य उत्पन्न होता है। अथवा सत्पुरुष का योग होने के पश्चात आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं। देखो सत्पुरुष के पहचान पहले तो आत्मज्ञान होता ही नहीं, और पहचान होने से आत्मज्ञान दुर्लभ नहीं है। तथापि कब दुर्लभ नहीं है कि उनके वचनों में, सत्पुरुष में उनके वचनों में और उन वचनों के आशय में जब तक जीव को प्रीति भक्ति न हो तब तक जीव में आत्मविचार भी उदय होने योग्य नहीं है, आत्मकल्याण का विचार उसको उदय नहीं आया है। ऐसा सत्पुरुष में उनके वचन में और उनके वचन के आशय के जो आत्मकल्याण रूप आशय होता है, जिसके आशय में आत्मकल्याण के सिवाय दूसरी बात होती नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस जीव को सत्पुरुष का योग हुआ है ऐसा सचमुच उन जीव को खुद को भी भासित हुआ है यह कहना मुश्किल है। मतलब उसको हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा पत्र है कि पहचान होने से कैसे कैसे परिणाम बन जाते हैं, ये अपने परिणाम से टैली करने योग्य बात है। आगे लिखते हैं कि जीव को सत्पुरुष का योग होने पर तो ऐसी भावना होती है, देखो पहचान होने से ऐसी भावना आती है कि अब तक मेरे जो प्रयत्न कल्याण के लिए थे वे सब निष्फल थे, वे सब निष्फल थे, क्योंकि लक्ष्य बिना के बाण की भांति थे, कोई लक्ष्य ही नहीं था मेरा आत्मकल्याण का। परंतु अब सत्पुरुष का अपूर्व योग हुआ है तो मेरे सब साधनों के सफल होने का ये हेतु है। उसको विश्वास आ जाता है कि अब मैं तिर जाऊंगा। लोक प्रसंग में रहकर जो निष्फल निर्लक्ष साधन किए, लोक संज्ञा में रह करके, लोक प्रसंग में रह करके, उस प्रकार से अब सत्पुरुष के योग में न करते हुए अवश्य अंतरात्मा में विचार कर, दृढ़ परिणाम रख कर जीव को इस योग में, वचन में जागृत होना योग्य है, जागृत रहना योग्य है। वो जागृति आती है पहचान होने से, अंदर में एक जागृति आती है, और उस प्रकार से भावना करके जीव को दृढ़ करना के जिसने में उसे प्राप्त हुआ योग अफल न हो, निष्फल न हो, वो बात उनको दृढ़ करनी है। सफल न हो जाए और सब प्रकार से इसी बल को आत्मा ने वर्धमान करना, ऐसे भावना को बढ़ाना, इस योग से जीव को अपूर्व फल होना योग्य है। पर ऐसी भावना में कौन सी चीज आड़े आती है कि उसमें अंतराय करने वाला परिणाम हो, मैं जानता हूं, ऐसा यह मेरा अभिमान, कुल धर्म की पकड़, और जिसे करते आए उस क्रिया का त्याग कैसे किया जाए, क्रिया की पकड़, ये सब अवरोधक परिणाम है। ऐसे कर्म को ज्ञानी के उदय में देखकर वैसे भावना का स्वयं आराधन करना इत्यादि प्रकार है। वही अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, यह प्रकार विशेष रूप से समझना योग्य है। यहाँ तो जितना ही हो सका उतना लिखा है, ऊपर जीवात्मा नहीं बैठते ना, जरा ख्याल रखिए, जीवात्मा के तो बंद कर देंगे। उपशम क्षयोपम और क्षायिक सम्यक तुके में व्याख्या कही थी, वो बात दूसरा विषय है। तो इतना जो दो पैराग्राफ है उसमें सत्पुरुष के पहचान होने से कैसे कैसे परिणाम होते हैं उनका बहुत विस्तार से वर्णन आया है। तो ये प्रश्न के उत्तर में वो बात, जिसका भी प्रश्न हो, विशेष रूप से इस पत्र का स्वाध्याय करना योग्य है। जघन्य मुमुक्षु जीव, मध्यम मुमुक्षु जीव और उत्कृष्ट मुमुक्षु जीव, कैसे कैसे प्रकार के अनजानपने या जानबूझकर भूल करता है, वो तो हर एक की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है, तो भूल भी अलग अलग प्रकार की होती है। जानबूझ करके मैंने क्या, तो उत्कृष्ट मुमुक्षु तो जानबूझकर भूल नहीं करता है, लेकिन जो जघन्य मुमुक्षु है और मध्यम मुमुक्षु है उससे हो जाती है। जानबूझकर मतलब क्या है कि वो अपनी प्रकृति को रोक नहीं सकता तो ओवरटेक कर लेता है। इनको पूछो कि ये भूल करने योग्य है तो ना बोलेगा, जानता है लेकिन प्रकृति वशात ये दोष करेगा। जैसे दृष्टांत लेते हैं कि इस मनुष्य भव में मान की प्रकृति बहुत तीव्र होती है, तो पूछो मुमुक्षु को तो ऐसा ही कहेगा कि मान तो तोड़ना चाहिए, मान तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपनी प्रकृति व साथ प्रसंग पड़ने पर वो मान उसको नड़ता है, मान आ जाता है, ऐसा बन जाता है, तो जानबूझकर हो गया उससे। उसको पता नहीं है, वो बात नहीं है, उनको मालूम भी है कि हमको ये गड़बड़ है हमारे में, लेकिन खुद ही इतना कमजोर है तो उससे भूल होती है। उत्कृष्ट मुमुक्ष को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उत्कृष्ट मुमुक्षुता में कषाय रस बहुत शिथिल हो जाता है, इसलिए उनको जानबूझकर कोई भूल नहीं होती है। अनजाने में कोई भूल हो जाए उपक्षोक्षम का दोष हो जाता है। जघन्य मुमुक्षु और मध्यम मुमुक्षु को तो उतनी परीक्षा बुद्धि भी नहीं है, तो अनजाने में वो किसी ज्ञान का क्षोभम वाले में फंस जाता है या किसी के त्यागी के अंदर में वो फंस जाता है, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी भूल है। बाकी छोटी मोटी प्रकृति की बात तो ठीक है, लेकिन सबसे उनको जो नुकसानकारक भूल होती है वो इस प्रकार की होती है कि कोई किसी सूक्ष्म विशेष शास्त्र ज्ञान वाला होता है तो उनको अनुसरण करने लग जाता है, या कोई त्यागी त्याग की मुख्यता वाला होता है तो उसका वो अनुसरण कर लेता है, तो ऐसे वहाँ फंस जाता है वो। इस तरह से नुकसान बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान इस तरह से हो जाता है मुमुक्षु को। बाकी जो चारित्र दोष के परिणाम है उसमें इतना दोष नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ दर्शन वो तीव्र होता है, जैसे कि वो जघन्य और मध्यम मुमुक्षु है तो थोड़ा बहुत धर्म साधन करता है तो उसमें संतुष्टपना उसको आ जाता है, या उसकी वो गिनती करने लग जाता है, देखो आज तो मैंने 2 घंटा स्वाध्याय किया, या मैं तो सारे दिन भी निवृत्ति लेकर के ऐसा ही करता हूँ, ऐसे अनेक प्रकार से जो संतुष्टपना आता है ये बड़ा नुकसान का कारण है, यानी दर्शन मोह की वृद्धि का कारण है। इसलिए दर्शन मोह की वृद्धि का जो कारण है वो छोड़ देना चाहिए। इस विषय में थोड़ा विस्तार से हमने जो बात किया है ये प्रयोजन सिद्धि में दिया है। प्रयोजन सिद्धि में जघन्य और मध्यम कक्षा के मुमुक्षु को धर्म साधन करते करते जाने और अनजाने में अनेक प्रकार की भूल हो जाती है, दर्शन मोह बढ़ जाता है, तो किस प्रकार से बढ़ जाता है इसका विस्तार करीब 80 मुद्दा लेकर के दिया है। तो अगर पूरा विस्तार से जानना हो या अपने को कौन सी बात लागू पड़ती है वो जानने हो तो थोड़ा उसमें से देख लेना। मनोबल और आत्मबल को समझाइए। जिसको वीर्य गुण का क्षोभम होता है, यानी परिणाम में दृढ़ता विशेष रूप से होती है जिसको, और आत्मज्ञान नहीं हुआ हो उसको मनोबल कहते हैं। लेकिन मनोबल है वो एक थोड़ा टाइम यानी तो आयुष पर्यंत टिकने वाली चीज है, वो शाश्वत टिकने वाला बल नहीं है। जबकि आत्मबल होता है तो आत्मबल वो हमेशा के लिए शक्ति देने वाली चीज है। मनोबल से कोई व्रत नियम संयम अंगीकार करते हैं और पालन भी कर लेते हैं, निरतिचार भी पालन कर सकते हैं, हो सकता है, परंतु वो मनोबल से कोई आत्मकल्याण हो जाता है ऐसा नहीं बनता है। बाहर से दिखेगा कहो कितना मनोबल कितना है, लेकिन मनोबल वो आखिर में जड़ के आधार से उत्पन्न हुआ बल है, वो आत्मा की शक्ति के आधार से उत्पन्न हुआ बल नहीं है। आत्मबल होता है वो आत्म स्वभाव और आत्म शक्ति के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला बल है, वो ताकत बहुत बड़ी है और वो शाश्वत टिकने वाली चीज है, वो एक भव तक काम नहीं करती है। आत्मबल उत्पन्न होता है तो भव भवांतर में वो काम में आता है बल, जबकि मनोबल टिकता है वहां तक टिकता है, भवांतर में तो टिकना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा बन जाता है, क्योंकि इसका आधार मन है, मन तो जड़ है, इसलिए मनोबल में और आत्मबल में बाहर से दृढ़ता करीब एक समान दिखे तो भी बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। पर परिणाम बल है वो मनोबल है, ऐसा समझ लेना, क्योंकि तीसरा तो कोई बल है नहीं क्या, या तो मनोबल है परिणाम में या तो आत्मबल है, दो में से एक होता है। परिणाम तो आत्मा का है, परिणाम को तो आत्मा का है, लेकिन इस परिणाम को आधार किसका है, ये महत्वपूर्ण बात है। मनोबल का परिणाम भी आत्मा का है और आत्मबल का परिणाम तो आत्मा का है, लेकिन आधार किसका है, ये सवाल है। जिसको स्वयं का आधार नहीं वो पराधीन है, पर का आधार लिया हुआ है तो वो ताकत सही नहीं है। आत्मज्ञानी को आत्मबल होता है, दूसरे को नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का अवलंबन जिसको होता है उसको ही आत्मबल होता है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को आत्मबल आने का समीपता है, भले उसको मनोबल होता है लेकिन वो आत्मबल आने की तैयारी में आ गया है। हाँ तो है, वो ट्रांसफर होने की तैयारी होगी उनकी, मनोबल वाला ट्रांसफर होकर के आत्मबल में आ जाएगा वो, ऐसी बात है। बुद्धि में क्या है कि बुद्धि का क्षोभ ज्यादा होता है, गाढ़ ज्यादा होता है, तो उसको बुद्धि बल कहते हैं, लेकिन वो बुद्धि आत्मकल्याण में लगे तब तो सुबुद्धि है, और संसार के कार्य में लगकर अनेक प्रकार के कर्म बंधन वाला काम करे तो कुबुद्धि है, सुबुद्धि नहीं है, वो कुबुद्धि है। तो बुद्धि का बल भी उपयोग सदुपयोग करे तो सही अच्छी बात है, वरना दुरुपयोग तो हो ही जाएगा। बुद्धि एक ताकत जरूर है, लेकिन कहाँ लगाने उस ताकत को, उस पर उसका फल आधारित है। हमारे पास पैसा है, ताकत है पैसा के, इसका हम दान भी कर सकते हैं और इससे व्यसन भी कर सकते हैं। पचास सौ रुपया का शास्त्र भी खरीद सकते हैं और सौ रुपये से कोई दारू भी पी लेता है, सौ रुपये का, सौ रुपया तो सौ रुपया है, उपयोग कहाँ हुआ वो सवाल है। बुद्धि तो बुद्धि है, इसका उपयोग कहाँ होता है वो सवाल है। सत्संग के आड़ में और सत्संग कैसे होता है तो विस्तार से समझाइए। सत्संग के आड़ में मैंने क्या कि यथार्थ सत्संग की पहचान नहीं होती है, तो क्या समझ लेते हैं कि चलो 5-25 जने एक जगह इकट्ठे होते हैं और धर्म की बात करते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम सत्संग करते हैं, लेकिन ऐसी बात ये नहीं है। यथार्थ सत्संग तो ऐसा होना चाहिए कि जिस सत्संग के कारण से सत का रंग चढ़े, जिससे सत का रंग चढ़े वही यथार्थ सत्संग है। अगर सत का रंग नहीं चढ़े तो सत्संग में नहीं जाता है, सत्संग के आड़ में असत्संग उसको होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरी बात वो है कि जिसको सत्संग हम करें वो केवल आत्मकल्याण की निष्ठा से ही इस विषय को स्पर्शता है या कोई अन्य हेतु भी है, ऐसा थोड़ा जांच तलाश कर लेना चाहिए। कोई मान के हेतु, लोभ के हेतु तो नहीं बात चल रही है, तो संग करने योग्य नहीं होता है। फिर भी अगर हमें परीक्षा नहीं है, परीक्षा प्रधानी नहीं है, तो सत्संग मान करके हम शामिल हो जाते हैं, तो सत्संग के आड़ में असत्संग हो जाता है। सामान्य मुमुक्षु और भवभ्रमण में आए हुए मुमुक्षु में क्या तफावत है? भवभ्रमण की चिंतना में जो नहीं आया तो कोई न कोई धर्म साधन अपनी मति अनुसार कर लेता है, वो सामान्य मुमुक्षु है। चाहे पूजा, भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, दयादान, तीर्थ यात्रा, कुछ भी करेगा, कुछ न कुछ तो करेगा, वो सामान्य मुमुक्षु है। लेकिन ऐसे करते हुए वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो, कुछ हाथ में नहीं आएगा, करते रहेगा हाथ में कुछ आएगा नहीं। मैंने आत्मकल्याण की दिशा में उसका एक कदम भी नहीं है, जबकि भवभ्रमण की चिंतना में आता है तो उसका यथार्थ मार्ग शुरू होने का एक नीम का ईंट, नीम का पत्थर, फाउंडेशन का स्टोन उनका ठीक है, बराबर है, तो उसमें उसको आना चाहिए। आज दोपहर में वो बात चली 195 पत्र से कि भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य काल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये तंकोत्कीर्ण बात किया है, बहुत वजनदार बात किया है। वास्तव में तो मुमुक्षु है ही नहीं, लेकिन मुमुक्षु का बेस लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि जो मुमुक्षु है वो भी ऐसा ही क्रिया में शामिल होता है। जो सच्चा मुमुक्षु है वो भी शास्त्र स्वाध्याय पूजा भक्ति करेगा, और जो नहीं है वो भी ऐसा करेगा। तो ऐसे तो उनको बाहर से देखने वाले तो ऐसे ही देखेंगे कि देखो सब साथ में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि योग्यता एक सरखी है, ऐसा मतलब नहीं होता। एक ही क्रिया करने वाले में भिन्न भिन्न योग्यता होती है, ऐसी बात है। जीव को पहले चार प्रतिबंध जाता है के चार प्रकृतियां विस्तार से, ये पहले प्रतिबंध जाता है। प्रतिबंध चार प्रकार के होते हैं, समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, देह प्रतिबंध शरीर प्रतिबंध, और संकल्प विकल्प प्रतिबंध। समाज की मुख्यता करके आत्मकल्याण के उपाय को गौण करना, वो समाज प्रतिबंध है। कुटुंब को मुख्य करके, कुटुंब के कार्य को मुख्य करके आत्मकल्याण के उपाय को गौण करना, वो कुटुंब प्रतिबंध है। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता का हिसाब लगा करके आत्मकल्याण को गौण करना, वो शरीर प्रतिबंध है। और अपने कई प्रकार के मिथ्या आग्रह होते हैं, इनको मुख्य करके आत्मकल्याण के विषय को ग्रहण नहीं करना, वो संकल्प विकल्प प्रतिबंध है। वो पहले जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा वहाँ तक तो पूर्णता का लक्ष्य भी नहीं होएगा। ऐसी बात है तो ये तो पहले जाना चाहिए। प्रकृतियां तो उत्कृष्ट मुमुक्षुता में आने से शिथिल हो जाएगी और बाद में जाएगी। मुमुक्षु जीव को परमे सुख बुद्धि का अभिप्राय पूरा कब पलटता है? मुमुक्षु जीव को सुख बुद्धि का अभिप्राय आत्मा में आत्मिक सुख भरा हुआ है, अनंत सुख भरा हुआ है, ऐसा भाव भाषण होने से, यानी कि आत्मा का स्वभाव की पहचान होने से, स्वरूप की पहचान होने से, यानी स्वरूप के सुख का निश्चय होने से उनका अभिप्राय पूरा चला जाता है कि कहीं भी परमाणु की किसी भी पर्याय में सुख नहीं है। पांच इंद्रिय के विषयभूत किसी भी प्रकार के परमाणु के पर्याय हो, अवस्था हो, जड़ में सुख सरासर नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन वो सुखाभास आत्मसुख का भाव भाषण हुए बिना, पहचान हुए बिना जाता नहीं है। जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संस्कार जीव ने बहुत दृढ़ किया है। पर पदार्थ में सुख बुद्धि का संस्कार बहुत दृढ़ हो चुका है, तो आत्मा में सुख है ऐसा भाषित हुए बिना उसमें फिर बदली होती नहीं है। निर्णय नहीं मिटता, निर्णय छुपता नहीं, बदलता नहीं। हाँ, ये दूसरा संपत्ति, यही सम्यक दर्शन का कारण है। ये अभिप्राय बदलने से फिर जो पुरुषार्थ है वो आत्मसन्मुख हो जाता है। इसके पहले पुरुषार्थ परद्रव्य सन्मुख रहता है, क्योंकि उसमें सुख लगा है तो परिणाम वहीं दौड़ेगा, अनिवार्य रूप से वहां दौड़ेगा, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। हाँ हाँ, प्रथम संकेत मैंने सत्पुरुष की पहचान आ सकती है, पर वो बात थोड़ी पतली हो जाती है पहचान आने से, लेकिन अभिप्राय पूरा का पूरा नहीं बदलता है। प्रश्न वो है कि सुख बुद्धि का अभिप्राय पूरा कब बदलता है, प्रश्न उस प्रकार का है, पूरा कब बदलता है? तो पूरा तो अपने सुख का भाव भाषण हुए, निश्चय हुए, पहचान हुए, कब बदलता है? इसके पहले नहीं बदलता। अनंत सिद्धों को अपने ज्ञान पर्याय में किस प्रकार स्थापित किया जाए? अपने सिद्ध परमात्मा को अपने ज्ञान पर्याय में स्थापित किया जाए, तब अनंत सिद्ध को भी स्थापित कर दिया उसने। सम्यक दर्शन के काल में यह होता है, सम्यक श्रद्धान अपना सिद्ध स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है। अपना सिद्ध पद का श्रद्धान हो गया तो उसमें अनंत सिद्धों को उसने अपने पर्याय में स्थापित कर दिया। मैंने स्वीकार कर लिया कि सिद्ध भगवान ऐसे ही होते हैं। नौ तत्वों का भूतार्थ से जानना सम्यक दर्शन किस प्रकार है? वो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की परिभाषा है, ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन। नौ तत्वों का ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन भूतार्थ आश्रित मैंने अपना स्वरूप आश्रित वो ज्ञान होता है तो यथार्थ होता है, वरना विकल्प आश्रित वो ज्ञान यथार्थ नहीं होता है, मन आश्रित वो ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। स्वरूप का ज्ञान साथ में है इसलिए उसका नौ का ज्ञान है वो यथार्थ होता है, उसमें गलती होती नहीं है। नौ तत्व में चैतन्य ज्योति किस प्रकार छिपी हुई है? नौ तत्व जीव का ही परिणाम है तो जीव तत्व तो है ही, सामान्य रूप से तो चैतन्य ज्योति है, विशेष रूप से उसका नौ भेद है। तो विशेष को गौण करे और सामान्य को ग्रहण करे तो चैतन्य ज्योति जो छिपी हुई है वो छिपी नहीं रहेगी, फिर वो छिपी नहीं रहेगी। पूज्य निहाल भाई जी ने अपरिणामी में अपनापना थापने को कहा है, किस प्रकार अपनापन थापा जाए? वो अपनापन की स्थापना श्रद्धा ज्ञान में होती है तो सम्यक वो होता है, तब होती है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक प्रकट करने से अपरिणामी ध्रुव मूल स्वरूप में अपनापन स्थापित होता है, तो स्वानुभव के काल में ही होता है प्रथम, इसके पहले कभी होता नहीं है। तो स्वानुभव कैसे हुए वो सवाल हो जाएगा, कि स्वरूप की पहचान होने से। स्वरूप की पहचान कैसे हुए, कि सत्पुरुष की पहचान होने से। सत्पुरुष की पहचान कैसे हुए, कि दृढ़ मुमुक्षुता पूर्णता का लक्ष्य होने से और उपदेश को अमलीकरण करने से। और फिर ये प्रश्न आएगा कि पूर्णता का लक्ष्य कैसे हो, कि बहुभ्रमण की चिंतना से हो। बहुभ्रमण की चिंता नहीं होगी तो पूर्णता का लक्ष्य आएगा नहीं। बीच में बहुत से आनुषंगिक परिणाम हैं लेकिन ये बात थोड़ी संक्षेप में ले लेते हैं। बीच में आनुषंगिक परिणाम बहुत से होते हैं अनेक प्रकार के, तो वो बात अगर इसको समझनी हो तो निर्भ्रांत दर्शन की पगडंडी पर का पहला प्रकरण है, उसमें विस्तार से वो बात का एक पूरा चैप्टर लिखा गया है, वो पढ़ना वहाँ से। श्रीमद् जी कहते हैं कि योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण है। योग्यता कैसे होनी चाहिए? योग्यता मैंने पात्रता, योग्यता मैंने पात्रता। तो पात्रता में दर्शन मोह कमजोर होता है, ज्ञान में निर्मलता आती है और चारित्र मोह में रसमंद होता है। तीनों गुण में फर्क पड़ता है और वो उत्तम मुमुक्षुता के काल में ये पात्रता उत्तम होती है और वही ज्ञान प्राप्ति मैंने आत्मज्ञान प्राप्ति का कारण बनता है। इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं।